السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. كيسا محسوس ہے آپ کو لبیک سن کے؟ ان شاء اللہ تعالی چند دن ہی رہ گئے ہیں ہم اس مبارک سفر پہ جانے والے ہیں، وہ سفر جو اس زمین پر سب سے مقدس گھر کا سفر ہے، یعنی اس سے زیادہ بہترین جگہ کوئی اس زمین پر ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. یہ سفر اس لیے بھی بہت مبارک سفر ہے کہ یہ سفر آپ کو بہت ساری رحمتیں، برکتیں اور بخشش سمیٹنے کا موقع دیتا ہے، اور یہ وہ سفر ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا سفر ہے. یہ وہ سفر ہے جس میں اللہ تعالی آپ کو اپنا مہمان بناتا ہے. ہم اکثر عمرے کے سفر کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے، حالانکہ عمرے کو بھی حج ہی کہا گیا. حج اور عمرہ دونوں کو حج کہتے ہیں. حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور عمرے کو حج اصغر. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو حاجہ حاجہ کہہ کے پکارتے ہیں، کیونکہ عمرے والا بھی حج پہ ہی تو ہے. یہ سفر بڑی سعادت کا سفر ہے، اس لیے کہ دیکھیں، آپ بھی جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں، اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں. جس کو آپ نہ چاہیں وہ آپ کے گھر میں آ نہیں سکتا. اسی طرح اللہ تعالی کے گھر کا سفر بھی وہ ہے کہ جس میں جس کو اللہ تعالی خود دعوت دے وہی جا سکتا ہے، اور ہم اس پر اللہ تعالی کا بڑا ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہاں تک ہمیں پہنچایا. ہم نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما دے، ہم نے ایک قدم بڑھایا اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لے اور ہمارا یہ سارا ہی سفر مبارک کر دے اور خیر کے ساتھ مکمل کرا دے. بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو پہلی دفعہ یہ سفر کر رہے ہیں، بہت سو نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، مگر سب کے لیے یہ ایک اس لحاظ سے نیا سفر ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں بدل گئی ہیں. عبادات تو وہی ہیں لیکن سفر کی ریکوائرمنٹس بہت ساری آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ چینج ہو چکی ہیں، لہٰذا ہمیں ہر چیز کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ فالو کرنا ہے. مگر جہاں ہم ان چیزوں پہ توجہ دیں، جہاں ہم ایپس کے بارے میں انفارمیشن لیں، پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا، ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، وہاں ایک بات نہ بھول جائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان خیر الزاد التقویٰ، کہ بے شک بہترین سامان تو تقویٰ کا سامان ہے. یہ نہ ہو کہ باقی سامان رکھ لیں اور تقویٰ کا سامان یہی بھول جائیں. ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جہاں اپنا دوسرا سامان باندھو گے نا، وہاں پہ تقویٰ بھی ساتھ لے کر جانا. یعنی کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہوتا، جس میں رب کی نافرمانی ہو، کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس میں اللہ تعالی کی طرف سے نظر رحمت مجھ سے پھر جائے، اور کوئی نیکی ایسی نہ ہو کہ جو مجھے کرنے سے رہ جائے، کوئی ایسی اللہ کا رضا کا کام جس سے وہ خوش ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام کرنا میں بھول جاؤں یا میں چھوڑ دوں اس کو اپنی سستی کی وجہ سے. تو یہ ہے تقویٰ اور یہی سب سے بہترین سامان ہے. دیکھیں، جب ہم دوسری ویکیشنز پہ جاتے ہیں تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور ہم بہت کچھ ساتھ باندھتے بھی ہیں، بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس سفر کی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ جب ہم वेकेशंस पे जाने लगते हैं तो एक आराम का तसव्वुर जहन में होता है कि वहां जाके रिलैक्स करना है, आराम करना है। ये वो वाला सफर नहीं है जिसमें आप आराम करने जा रहे हैं, ये वेकेशन का सफर उस लिहाज से नहीं है जिसमें बड़ी रिलैक्सेशन होगी और खाएंगे पिएंगे और सोएंगे जहां, नहीं, बल्कि ये वो सफर है कि जिसमें कि हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह जब इस सफर से लौटे तो हम बख्शे हुए हों, अल्लाह हमारे गुनाह धुल चुके हों, और गुनाहों को धोने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुलूस दिखाना पड़ता है, आंसुओं की झड़ियां लगानी पड़ती हैं, तभी गुनाह धुलते हैं। तो जब हम दूसरी वेकेशंस पे जाते हैं तो वापस आते हैं तो हमारा पैसा खर्च हो चुका होता है, जेब खाली हो चुकी होती है, लेकिन ये वो सफर है जिसमें आप जेबें भर भर के लाएंगे, बल्कि इतना सामान, इतना सामान कि जो उठाया भी ना जा सके, लेकिन ये वो मादी सामान नहीं है, सूटकेसेस नहीं है, ये अजर व सवाब का सामान है। देखिए आपके घर कोई आता है ना तो जाने लगता है तो आप उसको कोई गिफ्ट दे के भेजते हैं, अल्लाह ताला जाएंगे तो आपको ऐसे ही जाने देगा, इतना कुछ दे के भेजेगा जिसका आपको तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लिहाजा इस यकीन के साथ जाएं कि बहुत कुछ लेने जा रहे हैं, बहुत कुछ समेटने जा रहे हैं जो घर बैठे हुए मैं नहीं कर सकती, हमारे दीन में रहबानियत नहीं है, मगर ये जो हज और उम्रे का सफर है ये रहबानियत है हमारी, मुसलमान की ये रहमानियत है कि वो वहां जाता है और फिर बस सारी चीजें पीछे भूल गया, पीछे क्या छोड़ा हुआ है, पीछे क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, मेरी जॉब पे क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे शहर में क्या हो रहा है, सब कुछ भुला के वो सिर्फ एक तरफ ध्यान लगाता है। द मोमेंट अपने घर से स्टेप बाहर निकालता है ना, वो अल्लाह के रास्ते में है। क्या कोई और सफर ऐसा हो सकता है कि द मोमेंट आप घर से पहला कदम बाहर अपने दरवाजे से निकालेंगे आप अल्लाह के रास्ते में, आपकी इबादत शुरू हो गई, आपका एक एक कदम सवाब का है, एक एक कदम पे अजर मिलेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने किसी काम की वजह से इस अजर को गंवा बैठे, अल्लाह ताला की रहमत की नजर हम पर मुतवज्जे हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी किसी बदजुबानी की वजह से, लड़ने झगड़ने की वजह से, बदतमीजी की वजह से, गइबत चुगली की वजह से, झूठ की वजह से, गुस्से की वजह से, और छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर होने की वजह से, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की रहमत की नजर हमसे फिर जाए। बहुत जरूरी है कि हम इस सफर को फूंक फूंक के गुजारें, जब तक हम वापस घर नहीं आ जाते, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें, अपने कानों पे कंट्रोल रखें, अपनी नजरों पे कंट्रोल रखें, हया की चादर पहन के जाइए घर से, एक वैसे अबाया तो हम पहनते हैं, एक हया का भी अबाया। इसी तरह जुबान, इसको बाहया बना लीजिएगा, कानों को ऐसी हर बात से बचाइएगा जो इनको गुनाहगार कर दे। ये सफर अल्लाह के रास्ते का सफर है, ये अलग है बाकी सफरों से। जब आप जहाज में भी बैठे तब भी अल्लाह का जिक्र, जितनी देर एयरपोर्ट पे बैठे अल्लाह का जिक्र, जितनी देर जब घर से निकल के भी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं अल्लाह ताला का जिक्र जुबान पे होना चाहिए। अल्लाह के घर की हाजिरी को हल्का ना समझें, इसके ऊपर शुक्र होना चाहिए, दिल शुक्र से भरा होना चाहिए। कितनी ही निगाहें हैं जो तरसती हैं कि कभी वहां हम भी पहुंच जाएं। तो कायनात के आलमों के रब के दरबार में आप हाजिरी देने जा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी सआदत है। कोई प्रेसिडेंट बुला ले अपने घर पे तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना होगा, रब्बुल आलमीन के दरबार में जाना है, तब कितनी खुशी और कितना केयरफुल होने की जरूरत है, कितना हर लम्हा शऊर के साथ गुजारने की जरूरत है कि हम उसकी नजरों में हैं और वो देख रहा है कि मेरे घर के लिए निकले हैं, और कोई नियत नहीं, कोई और इरादा नहीं, सिर्फ ये कि वो राजी हो जाए, वो माफ कर दे, वो हमारी दुआओं को सुन ले, वो हमारी इस पुकार को कबूल कर ले जो लब्बई की पुकार है। तो इसलिए इस सफर में हमने अपने आप को तकवा के लिबास के साथ मुजयन करके निकलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पै दर पे हज और उमरा करो, बेशक ये दोनों फकर को और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते जैसे भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। ऐसे गुनाह धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमरा उन तमाम गुनाहों का कफारा है जो इस और पिछले उम्रे के दरमियान सरजद हुए। यानी अगर आप पहले भी उमरा कर चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका उमरा इन दोनों उम्रों के दरमियान के गुनाहों की बख्शिश का सबब बन जाएगा, कफारा बन जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र अदा करते हैं कि 2 साल तक ये सब चीज बंद रहने के बाद अल्लाह ताला ने अब हमें मौका दिया कि हम उसके घर की ज़ियारत कर सकें। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम जा सकें और अपनी बख्शिश करवा सकें। इसी तरह इसके बारे में आता है कि जो उम्रा है ये ऐसी चीज है जिससे इंसान की फकर और मोहताजी दूर होती है। यानी हदीस में आता है, हाँ, जो उम्रा मोहताजी को और फकर को दूर करता है, रिस्क में इजाफा करता है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि अच्छा पता नहीं मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, क्या हो गया। नहीं, ये तो फकर और मोहताजी को दूर करने वाली चीज है। अल्लाह ताला रिस्क में इजाफा कर देगा, रिस्क में बरकत डाल देगा, तो ना सिर्फ बख्शिश होगी, फकीरी भी दूर होगी। और अल्लाह पर ईमान और जिहाद के बाद सबसे अफजल अमल हज है। इतना बड़ा अमल है ये, और हज और उम्रा करने वालों की दुआएं कबूल होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गाजी फी सबीलिल्लाह और जो हज और उम्रा करने वाले हैं, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। ये कौन होते हैं? अल्लाह ताला के मेहमान, दुयूफ और रहमान। और इनको बुलाया गया है, आपको इनविटेशन आया है तब आप जा रहे हैं, और उन्होंने हुक्म की तामील की और उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया। यानी इंसान जो इस सफर में मांगता है ना, अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि वो उसको कबूल करेगा। तो फिर तो एक लम्हा भी इस सफर में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हम दुआओं से गफलत करें, दुआ में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फरमाया कि मैंने इनको बुलाया, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इनवाइट किया इनको, अब मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो ऐसे बंदे की दुआ रद्द नहीं होती। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर से फरमाया था जब वो हज पे जा रहे थे कि ऐ मेरे भाई मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तो ये उम्मत को सिखाने के लिए था ना, ताकि उम्मत भी ये समझे कि ये सफर कितना दुआओं की कबूलियत का सफर है। और आप अपने जाहिर है घर बार को, अपने खानदानों को बाज लोग छोड़ के जा रहे हैं और अल्लाह की खातिर निकले हैं, तो जाहिर है इसका अजरो सवाब शुरू से आखिर तक अल्लाह के जिम्मे है। तो लिहाजा वहां का सारा वक्त हमें ऐसे गुजारना है कि वो इबादत में हो, एक एक कदम इबादत में हो। फालतू की चीजों, फालतू की बातों, शॉपिंग गपशप इसमें ना गुजरे। हाँ, आप एक दिन जरूर रख लीजिएगा शॉपिंग का, उसमें आप शॉपिंग कर लें जो आपने करनी है, लेकिन बार बार बाजार के चक्कर, बार बार बाजार जाना, उसमें आपकी थकन भी होगी, आपका वक्त भी जाया होगा। देखें, ये जो मैंने अभी आपको हदीस बताई है ना, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने बुलाया है तो आए हैं, तो याद रखिएगा, ये जो हम सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं मैं फिर चली जाऊंगी, जैसे कि मेरी जेब में अगर पैसे हैं तो मैं फिर अगले साल फिर आ जाऊंगी, फिर अगले साल आ जाऊंगी, ये हमारी मर्जी पे नहीं होता। आप देख लें, 2 साल से अल्लाह ताला ने बंद कर दिया तो कोई भी नहीं जा सकता था। लिहाजा इसको समझें कि अल्लाह ताला तूने मुझे इनवाइट किया है ना, तो अल्लाह मैं लबैक पुकारती भी आ गई हूँ, और अब दिखाएं अल्लाह ताला को कि मैं कितना शौक रखती हूँ। देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये आपको, एक तो हमारा इनसे जी नहीं भरता, दूसरे ये है कि ये कितनी खरीद लेंगे आप, वो भी खत्म हो जाने वाली चीज है, लेकिन जो अजर व सवाब है वहां का, वो खत्म नहीं होगा। आप जरूर खरीदें, खास तौर पे खजूर जरूर खरीदिए, क्योंकि आगे रमजान आ रहा है इंशाल्लाह, तो खजूर आप ले लें, और वहां की खजूर है तो उसके अंदर और बरकत है, अभी मैं बताऊंगी आपको उसकी बरकत भी, लेकिन वो ले लें, और भी आपने कुछ लेना है ले लें, लेकिन बार बार ये काम ना करें, बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो खुद को ना थकाइए इस तरह, और पूरी मोहब्बत के साथ, अदब के साथ वहां जाना है। देखें, पहले हमारा जो जाना होगा वो इंशाल्लाह हो ताला मदीना होगा। मदीना तैयबा, ये जो फजीलत है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि मदीना के रास्तों पे फरिश्ते मुकर्र होते ना, यहाँ पे दज्जाल दाखिल हो सकता है ना ताऊन दाखिल हो सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मदीना में मर सकता है उसे जरूर मदीना में मौत आनी चाहिए, क्योंकि मैं उसके लिए सिफारिश करूंगा जो जिसको मदीना में मौत आई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मदीना में कयाम के दौरान वहां पे जो मुश्किलात आए, जहां वहां पे जो कोई कोई उसके ऊपर मसला आए, अल्लाह ना करे मसलन कोई बीमार हो जाता है, यहाँ पे कोई आपको मुश्किल आती है मदीना में, ये शहरे नबी है, तो फरमाया जिसने इस पे सबर किया ना, कयामत के दिन मैं इसकी गवाही दूंगा, या फरमाया इसकी सिफारिश करूंगा, ये मुस्लिम में रिवायत है। तो इसका मतलब वहां पे आपकी कोई बस लेट हो गई, वहां पे आपको कोई और कोई ऐसा मसला हुआ, तो मदीना में जो मुश्किल आएगी उसके ऊपर सबर करना इतना बड़ा अजर का बायस बनता है इंसान के लिए। और आपको पता है कि ये मदीना तो वो है कि जहां पर ईमान सिमट के आ जाएगा कयामत के करीब, दुनिया में कहीं और ईमान नहीं होगा, यहाँ पे ईमान सिमट के आ जाएगा। सुभान अल्लाह, ये वो जगह है, और इस यहाँ पे वो पहाड़ है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता था वह पहाड़ यहाँ पे है। यहाँ पे वो खजूर है, अजवा खजूर, जिसको फरमाइए जन्नत का फल है और जहर के लिए शिफा है, जादू भी नुकसान नहीं इंसान को देता, ये अजवा खजूर जो खाए सुबह में, तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। लिहाजा जब आप मदीना में दाखिल हो, अदब के साथ, एहतराम के साथ, ये सोच के कि ये मेरे नबी का शहर है, ये सोच के कि इस शहर ने मेरे नबी को उस वक्त बना दी थी जिस वक्त उनको हर तरफ से उनके लिए मसाइल थे, हर तरफ से मुखालफतें थी, जब कोई उनको अपनाने को तैयार नहीं था, इस शहर वालों ने मेरे नबी को अपनाया। इस वजह से उस शहर से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है। और इस कयाम के दौरान जो आप मदीना में करेंगे, तो आपका एक ही वजीफा होना चाहिए, वजीफा कह लें या जुबान पे एक ही बात होनी चाहिए, और वो है दरूद शरीफ। आखिर आप उनके शहर में आए हैं तो उन पे दरूद भेजेंगे, आप होटल में जा रहे हैं, सामान रख रहे हैं, आप यानी आराम करने जा रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप उस वक्त दरूद शरीफ ही पढ़ते रहिए, जो कि सबको ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मस्जिद नबी जाने से पहले अगर अच्छी बात है, अगर तैयार हो जाए और अच्छे से तैयार होके साफ सुथरे होके गुसल करके जाए तो बेहतरीन है। और मस्जिद में दाखिल होते वक्त पढ़े बिस्मिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़ुनूबी व इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। और जब निकलते वक्त भी सेम यही है, सिर्फ लास्ट वर्ड डिफरेंट है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ुनूबी व इफ्तह ली अबवाब फ़ज़लिक। ठीक है। और इस मस्जिद में भी बड़े अदब से जाना है, बड़े एहतराम के साथ जाना है। हज़रत उमर ने एक दफा लोगों को ऊंची आवाज में मस्जिद नबी में बातें करते हुए शोर करते हुए सुना तो पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो बताया गया कि ये बाहर से आए हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि ये अगर ये यहाँ के होते तो मैं इनको फिर सीधा कर देता। तो वहां पे बहुत अदब चाहिए, वहां पे नमाज पढ़ने का सवाब 1,000 गुना ज्यादा है, 1,000 गुना। कहीं और भी आप नमाज पढ़ेंगे उससे ज्यादा अजर व सवाब इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का। तो इसलिए खास तौर पे नमाजों का एहतमाम करना है वहां पे। और जब आप दाखिल हो तहियतुल मस्जिद पढ़नी है। और इसके बाद आपको जैसे कि पता है रियाजुल जन्ना जाने का आपको बताया भी था कि इस वक्त काफी रश है और हो सकता है आपको मिल जाए इजाजत, ऐप पे इजाजत लेनी पड़ती है, पहले की तरह नहीं है, हो सकता है ना भी मिले। अगर ना मिले तो फिर जैसे अल्लाह ताला की रजा, अगर मिल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं भी मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इस मुबारक जगह पे कदम रखने की ही हमें सआदत दे दी, हमारे लिए तो यही बहुत है। आप अंदर नहीं जा सकते तो वैसे आप वहां पे बाहर से भी जाके सलाम कह सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह लौटाता है, तो मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। और ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे है, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, वहां पे जाके कहना अस्सलाम अलैका या अबा बकर, अस्सलाम अलैका या उमर। तो उनको सलाम करना वहां पे। तो ये आप बाहर से भी कर सकते हैं, लिहाजा आप पहले से ही मैं कह रही हूँ बद्दिल ना होइएगा। अगर आपको नहीं वहां पे इजाजत मिल सकी, अगर आपको वहां पे नहीं मौका मिल सका थ्रू आउट आपके ट्रिप में, तो ये ना करिएगा कि आप बार बार बस वो ऐप को देख रहे हैं और सारा टाइम उसी में गुजार रहे हैं और उसी की तगोदौ में लगे हुए हैं। ये ना हो कि हम अपना वक्त इसके अंदर जाया करते हैं। ठीक है। तो अगर मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं भी मिलती तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम सिर्फ उस चीज के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना, हम लोग तो बहुत कुछ और है वहां पे जिसको समेटने जा रहे हैं। तो इसके अलावा हम लोग इंशाअल्लाह ताला जितनी देर मदीना में कयाम करेंगे तो हमारी मुख्तलिफ जियारात होंगी वहां पे, जिसमें खास तौर पे लास्ट टाइम भी जियारत रखी थी हमने वहां के एक म्यूजियम की, दारुल मदीना म्यूजियम है, जिसकी वजह से ही मैंने आपसे कहा था कि आप सीरत का मुताला एक दफा कर लीजिए, क्योंकि आप जब वहां जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के घर में रहते थे, कैसे ये मस्जिद नबी बनी, किस तरह के बर्तन से आप गुसल फरमाया करते थे, किस तरह के बर्तन में आप पानी लेते थे वुजू करने के लिए, जंगे खंदक कैसी थी, उहद कैसी थी, उनके सारे मॉडल्स वहां पे बने हुए। और वो बहुत ही बेहतरीन है वो म्यूजियम, यानी देखने वाला है। अगर आप कोई म्यूजियम भी, यानी मेरा ख्याल में इतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता जितना ये म्यूजियम है, कि यहाँ पे आपको जैसे एक तस्वीर आपके सामने आ जाती है कि कैसे ये सब चीजें हुई थी। इस म्यूजियम के लिए 25 दिरहम का टिकट है, जो उन्होंने कहा है कि जो आप में से जाना चाहे वो जाके खुद पे करेगा और फिर जाएगा, यानी ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है और सबके लिए कंपलसरी नहीं है जाना, जो जाना चाहे तो वो इंशाल्लाह मेरे साथ वहां पे जा सकते हैं। दूसरे वहां पे एक रात ऐसी भी है जब हम इशा के बाद मस्जिद कुबा पैदल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो लोग पैदल चल सकते हैं, तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक का सफर है, जो लोग पैदल चल सकते हैं तो वो चले, और जो नहीं चल सकते तो वो कोशिश करेंगे कि हम बस का इंतजाम करें, तो हम कुबा में जाके इंशाल्लाह नवाफिल अदा करेंगे। और उसके बाद वो बाग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आए थे और आपने वहां पे बैठे थे, तो उसको भी कोशिश है कि वो भी खुलवाया जाए और वहां पे भी हमें ले जाया जाए इंशाल्लाह ताला। देखिए ये जो सारा सफर है ना, इसमें सब्र के भी बहुत से मौके आएंगे। कहीं आप थक भी जाएंगे, कहीं आपको गर्मी ना लगे, कहीं आपको हजूम लगे कि रश बहुत है, खाना नहीं मुझे सही मिल रहा, बस क्यों लेट हो गई है, कोई ऐसी डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है। ठीक है, जितनी मर्जी कोई कोशिश कर ले या जितने मर्जी अच्छे ट्रेवल एजेंट या ट्रेवलिंग कंपनी के साथ आप जाएं, लेकिन एक्सपेक्ट के कई चीजें ऐसी हैं जो कि इंसानों के बस में नहीं होती। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि वहां पे सबर के मौके बहुत होते हैं और उसमें सबर करके आप अजर कमा सकते हैं। कभी आप उतरेंगे तो बहुत सारे लोग जल्दी आ नहीं रहे होंगे, कोई कहीं चला जाएगा, कोई बाथरूम चला गया, बस उसकी वजह से खड़ी भी है, अब आपको कोफ्त हो रही है, आपको गुस्सा चढ़ रहा है, क्यों इसकी वजह से, लेकिन सबर सबर। ये सिर्फ इबादत का सफर नहीं है, सबर का सफर भी है। ये एक प्रैक्टिस है कि अगर आप आगे हज के लिए इंशाल्लाह जाना चाहेंगे तो हज पे तो और भी ज्यादा सबर करना पड़ता है। कोई मौका भी आपका, चाहे आप इंतजार कर रहे हैं किसी का, चाहे कहीं गर्मी लग रही है, चाहे हजूम है, कोई मौका भी तो ऐसा नहीं है जो आपका इबादत से खाली है, जिसमें आपको अजर नहीं मिल रहा। हर मौके पे तो अजर कमा रहे हैं आप, फिर किस बात का गुस्सा और किस बात की उलझन और किस बात का चिढ़ना और बोलना और इरिटेट होना, ये नहीं करना, ये नहीं करना कि क्यों ऐसे हुआ और क्यों ये हुआ। बस अपना जिक्र करते रहें, दुआएं करते रहें। आपका वो जो होता है ना, जिसको कहते पहले करते थे, अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, वो जो एक टैक्सी में आप बैठते हैं तो वो मीटर घुमा देता है ना, उसके बाद जब उतरते हैं तो फिर उसको बंद करता है। तो आपने जो ये पहला कदम घर से निकालना है ना, तो आपका तो मीटर चालू हो गया, अब वो चल रहा है, आपके अजर लिखे जा रहे हैं, अनलेस हम खुद ही उसको रोके अपनी किसी गलती की वजह से या अपने रवैयों की वजह से। अदरवाइज वो चल पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका तो अजर, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप एयरपोर्ट पे भी बैठे हैं तब भी अजर मिल रहा है, आप एलिवेटर में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब भी अजर मिल रहा है, आप कहीं बैठे हुए खाना खा रहे हैं वहां पे तब भी अजर मिल रहा है, तो हर जगह आपका अजर है। तो लिहाजा किसी मौके पर भी अपने सब्र का दामन और अखलाक, अच्छे अखलाक को ना छोड़िएगा। इसी तरह वहां पे फालतू चीजें में एक ये भी फालतू चीज है कि जो हम बहुत ज्यादा तवज्जो हर वक्त बस तस्वीरें खींचने में, सेल्फियां लेने में, मूवीज बनाने में, इसमें हम सारा खर्च करते हैं, हमारा फोकस ही खत्म हो जाता है कि हम किस चीज के लिए यहाँ आए हैं। हमें ज्यादा ये शौक होता है कि बस लोग देख लें कि हम ऐसे दुआ कर रहे हैं, ऐसे खड़े में यहाँ पहुंच गए हैं, फिर उसको अपलोड कर रहे हैं, फिर उसको ये कर रहे हैं, इसमें ना वक्त लगाइएगा। इसी तरह अब हमने मैसेज चेक करने हैं, लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने ये किया था कि मैं अपना फोन नहीं लेकर गई थी और मैं एक और फोन ले गई थी जो जिस पे सिर्फ व्हाट्सएप पे हमारे उम्रे का ग्रुप था और मेरा फैमिली का ग्रुप था, उनकी खैरो आफियत पता चल रही थी और बस अगर कोई जो भी हम उम्रे के ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे वो था, इसके अलावा ताकि तीसरी चीज ही ना हो, क्योंकि हम बहुत जल्दी इस रो में बैठ जाते हैं कि किसका मैसेज आया उसका जरा देख लूं, उसका कर लूं, अगर वहां जाके भी हमने यही करना है तो फिर माइट एज वेल हम घर ही बैठे रहें, अगर वहां जाके भी हमने इन्हीं चीजों में पड़े रहना। देखें वहां पे अल्लाह ताला ने आपको हर तरफ से आजाद कर दिए, ना आपने खाना बनाना है, ना आपने घर साफ करना है, ना आपने बच्चों का होमवर्क चेक करना है, ना आपने उनको स्कूल भेजना है, ना आपने कहीं ड्राइविंग करके जाना है, ना आपको कोई और ऐसे धंधे काम धंधे हैं कि जो कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई कोई चीज है, इवन रमजान में भी आप देखें हमें इफ्तारियों सहरियों की तरफ ध्यान लगा रहता है, वहां पे तो ये भी नहीं है। इसके बावजूद अगर हम इबादत के लिए वक्त ना निकालें और फिर भी हमारी दुनियादारी खत्म ना हो, तो वो कौन सा दिन होगा कि जिस दिन हम वाकई अल्लाह के लिए यकसू हो जाएंगे, हनीफ हो जाएंगे? वो कौन सा टाइम होगा फिर, अगर इस सफर में भी नहीं कर सकते? ऐसे हम कहते रहते हैं कि अब टाइम नहीं मिलता वरना मैं तो बड़ी अच्छी इबादत करूं, लेकिन जब आपको अल्लाह ताला मौका देता है तो तभी तो आपको प्रूव करना है कि अल्लाह जब मेरे पास जूं ही मौका आया मैंने सारा अपना वक्त तेरी तरफ हनीफ होके गुजारा, यकसू होके गुजारा। यकसू ही बहुत जरूरी है। अगर आप फोकस्ड नहीं है और आपका जहन कहीं और ही घूमता रहता है तो ना दुआओं के अंदर वो मजा होगा, ना जिक्र में वो लज्जत आएगी, ना वहां का कोई मजा होगा। देखिए मैं, आप लोग मेरे साथ जा रहे हैं ना, मैं पहले भी रुक को ये कह चुकी और मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि उमरा इज नॉट जस्ट अ रिचुअल कि एक बस रसम है आपने जाके पूरी की और आ गए, मुझे उमरा करके आ गए। उसकी फील लेना, उसको दिल से महसूस करना, ये होना चाहिए हमारा मतमय नजर, हमारा मकसद कि वाकई एक जन्नत है जो इस जमीन पे, हम उस जन्नत की जियारत करने जा रहे हैं। ये होना चाहिए, ऐसा शौक और ऐसी लगन होनी चाहिए। लेकिन हमने अगर जन्नतें यही बनाई हुई है ना, तो हमें फिर यही याद आती रहती है। लिहाजा ये हमारा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक दिल से भी उम्रा आप करें, फिजिकली तो बहुत लोग करते हैं लेकिन दिल कहाँ है आपका? दिल भी तो अल्लाह के लिए खालिस करें, खाली करें इसको बाकी चीजों से, ताकि अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होइए। खाली कर दें। आप देखें, आप एक दफा व्हाट्सएप के मैसेजेस शुरू करते हैं देखने, कम से कम भी 15-20 मिनट तो इसमें लग जाते हैं। किसी ने वॉइस मैसेज छोड़ा होगा, किसी का पढ़ते पढ़ते, किसी का जवाब देते देते इतना टाइम लग जाए, और फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कहीं और पहुंच जाता है, वापस लाने में देर लगती है। अगर हम चाहते हैं कि हम फोकस्ड रहें तो ये काम ना करें, छोड़ दें सारे मैसेजेस, कोई नहीं, कयामत आती, ठीक है, कोई कयामत नहीं आएगी अगर हम इतने दिन नहीं देखेंगे। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे एक दूसरे का ख्याल रखिए, खास तौर पे जो एल्डरली हैं, जिनको जरूरत है, उनका ख्याल रखिए। और इबादत सिर्फ तस्बीह करना और नवाफिल पढ़ना नहीं है, किसी इंसान के काम आ जाना, उसकी तकलीफ को दूर कर देना बहुत बड़ी इबादत है, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो हमारे कौन से अमल से राजी हो जाए और किस पे हमें इतना अजर दे दे कि जो शायद पूरी रात नमाज पढ़ने पे भी ना मिलता। लिहाजा इस सफर के अंदर अपने इर्द गिर्द देखिएगा, जहां आपको कोई भी ऐसा मिले, जो भी जिसको भी जरूरत हो उसके साथ दीजिए। क्योंकि देखें, ये जो हम सफर कर रहे हैं ना, हदीस में आता है बूढ़ों का, कमजोरों का और औरतों का जिहाद जो है वो हज और उमरा है, समझ आए? ये उनका जिहाद है, तो बूढ़े का भी जिहाद है और आप लोगों का भी जिहाद है, तो इसलिए इसको ये समझे, जिहाद मुशक्कत भी होती है। जिहाद में आप इस जिहाद पे जा रही हैं तो इसमें याद रखिएगा मुशक्कत है, मेहनत है, और इसके अंदर दूसरा ये कि अजर कितना बड़ा है, जिहाद का अजर कितना बड़ा होता है। और इनको अल्लाह ताला के वफूद कहा गया कि जो हज पे जाने वाले, जो हुज्जाज होते हैं, जो उमरा करने वाले होते हैं, वो अल्लाह ताला के वफूद होते हैं, मेहमान होते हैं। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रख के कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, हमारी वजह से ना यहाँ पे किसी चीज को, ना किसी शख्स को, ना किसी जगह को, कोई हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो, हमारी वजह से किसी को हम तकलीफ ना हो, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम लोग निकलेंगे मक्का की तरफ। उम्रा के लिए। और इस सफर में शुरू से ये कोई सुन्नत की बात नहीं मैं करी, लेकिन वैसे हर दफा मैंने क्योंकि अपना भी यही मामूल बनाया और मैं हर अपने ग्रुप को यही कहूंगी, लास्ट टाइम भी यही कहा था कि आप लोग जरूर ये कोशिश करें कि इस पूरे सफर में हम एक दफा कुराने पाक की तिलावत मुकम्मल कर लें। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आप बिजी रहेंगे अपनी तिलावत में, जहां बैठे आपने तिलावत शुरू कर दी, और एक अच्छी भी फीलिंग होगी कि आपने सारा अपना जो वक्त बेकार चीजों में लग सकता था उसको फोकस कुरान पे कर दिया। तो जिस वक्त आप कुरान नहीं पढ़ सक रहे तो दुआएं कर रहे हैं, वरना फिर आप कुरान खोल लेते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सारा सफर ही आपका एक इबादत में गुजर रहा है। इसके बाद जो हम मक्का जा रहे हैं तो ये वो शहर है, मुकद्दस जगह है, जिसको अल्लाह ताला ने मुकद्दस किया और आसमानों जमीन की पैदाइश के रोज से ही ये काबिले एहतराम है। इतनी एहतराम वाली जगह, इतनी मोहतरम जगह, जिसको लोग नहीं मोहतरम कहते, अल्लाह ताला मोहतरम इसको बना रहा है, ऑनरेबल जगह है। और यहाँ पे जहां मतलब नेकी भी कई गुना बढ़ सकती है, वहां पे गुनाह का भी कोई इरादा करता है तो वो गुनाह भी उसके लिए देखिए उसका वबाल बढ़ जाता है। तो मक्का वो शहर है जिसको अल्लाह ताला ने सारी जमीन में बेहतरीन बनाया, और अल्लाह और उसके रसूल का महबूब तरीन शहर है मक्का, महबूब तरीन शहर। तो जिसको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, उसको उन चीजों से भी मोहब्बत होती है जो जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, और इसके भी तमाम रास्तों पे फरिश्ते सफ दर सफ पहरा दे रहे होते हैं। और यहाँ पे जो नमाज है इसका भी अजर 1 लाख नमाजों के बराबर हो जाता है। तो यहाँ की नमाज पढ़ी भी यानी अजर व सवाब में कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। यहाँ पे कोई जवाल का टाइम नहीं है, कोई ममनुआ टाइम नहीं है जिसमें कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए इस चीज को जहन में रखते हुए, और ये कि 1 लाख गुना ज्यादा मुझे सवाब मिलेगा, दुनिया में कहीं और नमाज पढ़ने का इतना बड़ा अजर नहीं हो सकता जितना यहाँ पे नमाज पढ़ने का है। तो इसके बाद तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नमाजों को रेगुलरली वहां पे, इससे पहले कि अजान हो तो हम वहां पे पहुंच जाएं। अब वल्लाहु आलम कितनी आसानी है वहां पे नमाजें अंदर पढ़ने की, लेकिन कम से कम सेहन में तो सभी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमारी वहां पे जो दौड़ है ना, वो है ही सिर्फ नमाज पढ़ने की, कि हम जा रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। हमारा जो स्केड्यूल होगा वो इस तरह से होगा कि जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आप उसमें आप में से कोई ऐड नहीं है तो प्लीज मुझे ईमेल कीजिए और उसमें ऐड हो, क्योंकि हमारी सारी कम्युनिकेशन उसके थ्रू होगी। जिस वक्त इंशाल्लाह ताला हम पहुंचेंगे, जुमे का दिन होगा, ह्यूस्टन वाले लोग पहले पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला, सुबह में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन चूंकि होटल का कमरा मिलने में दोपहर तक का टाइम होगा, तो उस दौरान हम जाके अपना नाश्ता वास्ता कर सकते हैं और मस्जिद में जाके बैठ सकते हैं, वहां पे अपनी इबादत कर सकते हैं, जुमा हमें मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर आपका सामान वगैरह तो उन्होंने खुद ही रख लेना, तो वो उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी ये कि जब आपको कमरा मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप अपना अच्छी तरह उसमें तैयार हो सकते हैं। हर दिन तकरीबन जुमे वाले दिन के अलावा, जिस दिन हम पहुंचेंगे उसके अलावा दिनों में इंशाअल्लाह ताला असर के बाद कुछ ना कुछ दर्स का सिलसिला रखेंगे, जो कि वहां पे आपको बता दिया जाएगा और इस ग्रुप में ही डाल दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह जो लोग भी एल्डरली हैं तो चाहें तो वो इंशाअल्लाह आ सकते हैं हमारे साथ, अदरवाइज हम इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी होगा मस्जिद नबी का पूरा चक्कर लगा के और देखेंगे, कोई हमें गाइड भी करेगा इस सिलसिले में, और हम जन्नतुल बकी में भी वहां पे हम तो बाहर ही खड़े रह सकते हैं, औरतें अंदर नहीं जा सकती, कोशिश करेंगे कि हम वहां तक भी जाएं। जहां पे बहुत ही बड़े बड़े लोग दफन हैं। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहिम की कब्र मुबारक यहाँ पे है, उम्महातुल मोमिनीन यहाँ पे दफन है। और खास तौर पे आप देखेंगे कि जहां पे को पुलिस वगैरह खड़ी हुई है तो वहां पे तो कोई ना कोई सहाबी है, हजरत उस्मान गनी वहां पे, हजरत हफ्सा, हजरत आयशा वगैरह, बाकी भी उम्महात सिवाय दो के यहाँ पे दफन है। इसी तरह बीबी हलीमा है यहाँ पे, इमाम हसन, इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम जाफर, हजरत अब्बास, फिर यानी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी यहाँ पर खबर अता फरमाए। तो कोशिश होगी कि हम वहां तक भी जाएं और वहां पे दुआ करके आए उनके लिए। इसके अलावा फिर उसके बाद जब हम इंशाल्लाह मक्का चले जाएंगे तो वहां की अपनी ज़ियारत है, अगर आप लोग जाना चाहें तो वहां पे भी जा सकते हैं और देख सकते हैं, जो आप लोगों को बस में ले जाया जाएगा इंशाल्लाह ताला, एक दिन की वहां की ज़ियारत भी है। और फिर हम देख लेंगे कि वहां पे किस तरह इजाजत मिलती है नमाजों की, वो भी आपको वहां जाके ही ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी हर दिन चेंज हो रहे हैं वहां पे रूल्स और ज्यादा रिलैक्सेशन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद तो यही है और अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि उस वक्त हमारे लिए ज्यादा ही सहूलत हो जाए और हम नीचे ही तवाफ कर सके इंशाल्लाह ताला। और फिर उसके बाद हमारी आप देखेंगे दिन बहुत ही कम हैं, दिनों का पता भी नहीं चलना और गुजर जाएंगे। कोशिश यही करिएगा कि हर दिन को और हर पल को, बल्कि दिन तो क्या, हर पल को हम वाकई ऐसा बना लें कि जिसमें अपने रब को राजी करने की लगन हो। यहां से आप कोशिश करिएगा कि अपने फालतू अबाए वगैरह ले जाएं और वहां किसी को जो भी गरीब होते हैं उनको दे दें, आप यूज भी कर लें वहां पे और उसके बाद वहां पे दे के आए, क्योंकि आप लोग और भी खरीद लेंगे वहां से इंशाल्लाह। इसी तरह कोई सदका व खैरात है, कोई देना चाहे या आप खुद भी लेके जाना चाहे, तो वहां पे जो काम करने वाले होते हैं उनको दे दीजिए। तो वहां का सदका देखें, वो एक शहर है, वहां पे भी गरीब लोग हैं, फकीर लोग हैं, तो जरूर कोशिश करें कि उन पे सदका करें। जो खवातीन अकेली जा रही हैं, कोशिश वो यही करें कि वो इकट्ठी रहें वहां पे भी। कमरे भी ऐसे दिए गए हैं कि अकेली अकेली औरतें इकट्ठी हों, तो इकट्ठी ही खाने के लिए जाएं, इकट्ठी ही इबादत के लिए जाएं। मैं भी इंशाल्लाह ताला वहां पे जब हम लोग पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको बता दूंगी। एक तो आपने जो मस्जिद की होटल की लॉबी है उससे आपने इंशाल्लाह नमाजों का स्केड्यूल ले लेना कि किस किस टाइम पे कौन सी नमाज है, उसके मुताबिक फिर हम देख के, और फिर मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी कि किस टाइम पे आपने होटल की लॉबी में मुझे मिलना है रात को, जिस वक्त के हम फिर तहज्जुद के लिए इकट्ठे निकलेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग उस टाइम को फॉलो करिएगा, हम किसी का ज्यादा वेट नहीं करेंगे। मसलन अगर मिसाल के तौर पे 3 बजे रात का टाइम है, एक तहाई रात जब रह जाएगी तभी का टाइम होगा, तो आपको कहा गया लॉबी में आ जाएं, तो आप लोग मिलके वहां पे पहुंच जाएं और फिर हम इंशाल्लाह इकट्ठे मस्जिद नबी जाएंगे। और इसी तरह हरम के लिए भी इंशाल्लाह इसी तरह हम करेंगे। फिर उसके बाद हम वहां पे फजर की नमाज पढ़ के और उसके बाद बैठे रहेंगे, फिर अपनी तिलावत करेंगे, दुआएं करेंगे, सुबह शाम की दुआएं करेंगे। उसके लिए भी आपके पास अगर कोई कार्ड है या कुछ जो भी आपकी दुआओं की बुक है वो आप जरूर साथ ले जाइएगा। वो करने के बाद फिर उसके बाद हम इशराक पढ़ के वापस आएंगे, तब तक आपका नाश्ते का टाइम वहां पे होटल में हो जाएगा, तो आप नाश्ता करके फिर आप आराम करेंगे, क्योंकि काफी रात से आप उठ गए होंगे, तो आप आराम करेंगे और जुहर से पहले फिर इंशाल्लाह आप उठ के उस तरह से अपना अलार्म लगा के जुहर के लिए जाएंगे। कोशिश करें अगर जोहर और असर तक आप मस्जिद में ही बैठे रहें और असर के बाद आप खाने के लिए जाएं, जो लोग पहले जाना चाहें तो ऐसे चले जाएं। कुछ तो मेरा स्केड्यूल होगा जो मैं आपको बताऊंगी, बाकी जो इसको ना फॉलो कर सके या नहीं है इतनी हिम्मत इस टाइम पे जाने की, वो फिर अपना खुद से देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप अपना खुद बना सकते हैं कि मैं इस टाइम पे जाऊं या मैं इस लेटर जाऊं या जिस तरह से भी आप लोगों को, लेकिन अपनी ये दुआओं की किताब और अपना कुरान आप अपने साथ साथ रखेंगे। आपको स्ट्रिंग बैग्स आपको मिल चुके होंगे, उसमें इंशाल्लाह हम अपनी चीजें रख के और ले जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कुरान पाक पढ़ने का वहां पे बहुत बहुत आपको मौका मिलेगा, बस में भी जब आप जाएंगे, इसी तरह जहाजों में, इसी तरह एयरपोर्ट्स पे बहुत टाइम मिलेगा आपको। इमाम शाफी का वाकया आता है कि 16 दिन में मक्के में वो रहे थे, मक्के के रास्ते में पहुंचे थे 16 दिन में, तो 16 बार उन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया था, 16 दफा। लिहाजा हम भी हिम्मत करके रहेंगे और हिम्मत के साथ इंशाल्लाह हम सारी कोशिश करेंगे कि हम इबादत करें। लेकिन जाहिर है हर एक की हिम्मत एक जैसी नहीं होती, जो नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं है, इसमें किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। आप लोगों को जिस तरह से आपके स्केड्यूल के मुताबिक हो उस तरह से आप कर लें, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि तहज्जुद का वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, तो उस टाइम को तो बिल्कुल भी आप लोग ना जाया नहीं होने दीजिएगा। अगर आप अपने घरों में तहज्जुद नहीं भी पढ़ते तो भले आप दिन में सो जाएं, लेकिन तहज्जुद के वक्त जरूर मस्जिद में आएं और वहां पे बैठ के दुआएं कीजिए, और इशराक तक अगर बैठेंगे तो हज और उमरे के बराबर सवाब मिल जाएगा, तो कौन इसको छोड़ना चाहेगा। तो लिहाजा सब जगह पर आपके पास चांसेस हैं कि अपनी नेकियां बढ़ा लें, अपना सवाब और कमा लें। तो जो भी करें एहसान के लेवल पे करें, बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करें, मारे बांधे वाली इबादत नहीं करनी, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये कोशिश होगी हमारी सबकी। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में हमारा, ये भी आपके लिए एक खुशखबरी है कि होटल हमारा अपग्रेड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि स्विस होटल के रिव्यूज कोई बहुत अच्छे नहीं थे, तो अब मरवा रोटाना हमारा होटल होगा इंशाल्लाह ताला, तो वहां पे हम स्टे करेंगे जो कि ज्यादा भी हरम से करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी भी बड़ी अच्छा हो गया कि हमें बहुत ज्यादा नहीं यानी चलना पड़ेगा। और फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उमरा ऐसे टाइम पे है कि माशाल्लाह इसके बाद आप देखें कि रमजान शुरू होने वाला होगा, तो आप धुले धुलाए वहां से आए और रमजान को स्टार्ट करें तो उसकी और ही एक यानी आप एक स्पिरिट में होते हैं ना, तो जब आप इतने स्पिरिचुअल जर्नी से आ रहे होते हैं तो वैसे ही इंसान का दिल अल्लाह की तरफ लगा होता है, और उसके बाद रमजान में एंटर हो जाना, ये बड़ी जबरदस्त ऐसी टाइमिंग अल्लाह ताला ने हमारी कर ली है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी वहां की इबादत को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्रे के बारे में कि कैसे आपने उम्रा करना है और कैसे वहां का होगा, ये आपको वहां जाके सारा बताऊंगी ताकि आपको भूल नहीं जाए। तो हम जब मदीना से चलने वाले होंगे तो एक दिन पहले इंशाअल्लाह ताला आपको सारा ब्रीफ कर दिया जाएगा। बाकी एहराम जो खवातीन का है तो उनका अबाया ही उनका एहराम है, उनका अबाया उनका स्काफ यही उनका एहराम है, उनको कोई एहराम की खास और कोई जरूरत नहीं है। जिस कपड़ों में आप कंफर्टेबल होते हैं उस तरह का ही आप अबाया लूज सा अपने साथ लेकर जाइए। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, मेरे पास हैं, कोशिश करूंगी कि सबको, आई डोंट नो कि इतने लोगों को मैं दे पाऊंगी या नहीं, लेकिन मेरे पास तवाफ के चक्रों की तस्बीहात हैं, उसमें 7 दाने होते हैं ताकि आप लोगों के लिए वो आसानी हो जाए। और कंफर्टेबल आपके शूज होने चाहिए, कोशिश कीजिए कि सॉक्स पहन के रखें ताकि बार बार वुजू करना आसान हो जाए, क्योंकि उसी के ऊपर ही आप फिर मसा कर लेंगे, ठीक है? तो वो फिर बार बार उतारनी उतारनी नहीं पड़ेंगी या पैर धोने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह ये आसानी नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी मैं आपको बता दूंगी वहां पे उम्रे का। और दूसरा ये कि वैसे तो हम हर वक्त ही मास्क पहनेंगे, और ये जो नकाब करते हैं उनके लिए बहुत ही आसानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस दफा फिर हमें एहराम में भी नकाब की हालत में ही रहना होगा। और उसके लिए फिर आपको परेशान इसलिए नहीं होने की जरूरत, क्योंकि जिस वक्त आपकी यानी जब वहां पे उन्होंने फतवा दे दिया और वहां की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त जो टाइम है इसकी रिक्वायरमेंट है, इसका तकाजा है, तो आप ये ना परेशान हो कि अब हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे इस सफर को, और जो लोग नहीं जा पाए इस दफा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी हमारे साथ लेकर जाए अगली दफा, और हमारे लिए सफर को, सबके सफर को अल्लाह ताला इतना मुबारक बना दे, इतना खैर का बायस बना दे, और बहुत सारी नेकियां वो अपनी शान के मुताबिक हम सबको अता फरमाए, और हमारी बख्शिश कर दे, ये सफर हमारी बख्शिश का सबब अल्लाह ताला बना दे, वहाँ के कयाम को, वहाँ की दुआओं को, वहाँ की उम्रे को, इबादत को, तहज्जुदों को, इन सब को अल्लाह ताला, और वहाँ की एक एक कदम को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, और हमारे नामाय आमाल में अल्लाह ताला पहाड़ों के बराबर इसको करके तोल दे। वहाँ पे इंशाल्लाह ताला बसेस होंगी, जिसमें ये दो बसेस खवातीन की ही हैं, आप लोग एक बस में तो मैं भी होंगी, दूसरी बस में भी दूसरी खवातीन होंगी, और एक में फैमिलीज होंगी, तो आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं और उसमें बैठना चाहें तो वहां बैठ सकते हैं, आप लोग मेरे साथ दूसरी बस में बैठना चाहें तो वहां पे भी बैठ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये थोड़ी सी बात थी अपने सफर के हवाले से, उम्मीद है आप लोग एक्साइटेड होंगे जाने के लिए। अगर किसी का कोई सवाल है तो इंशाल्लाह ताला आप पूछ लीजिए। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك। जी आप, इन्होंने सवाल पूछा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला, आप कैलिफोर्निया में, और आप कह रही हैं कि आपको ज्वाइन कर सकते हैं उम्रे के लिए। असल में अब तो सारा पैकेज सोल्ड आउट हो चुका है, तो इस दफा तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगली दफा के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला खैर के साथ हम सबको लेकर जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली दफा पहले से बुकिंग करा लेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह ताला सबको लेकर जाए, सबके नसीब में करें, अल्लाह आमीन, अल्लाह ताला हम सबको बार बार ज़ियारात नसीब फरमाए। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, मेरे ख्याल में और कोई सवालात नहीं है। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته